नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग के अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफी उछाल आया है प्राइसेस में इन सभी चीजों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इंपैक्ट हुआ है, शुरू में हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा इंपैक्ट हुआ 30,000 से 35,000 टन पर डे के हिसाब से। और इसी सिचुएशन के रहते जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो हमारी अपकमिंग खरीफ सीजन की है वो 390 लाख टन है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है।
देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है, और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है।
विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने देश में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के बंद होने की खबरों का खंडन किया है। एजेंसी ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे और निराधार दावों और भ्रामक सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग द्वारा आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत का उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और राज्य के विकास को उजागर करना था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के अंतर्गत कंपनियों को मंजूरी पत्र सौंपे। कुल 29 आवेदनों को 7,100 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दुनिया भर की मुद्राओं में अस्थिरता देखी जा रही है। लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक पहले संसद के प्रवर समिति को भेजा गया था। इसके बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में आगे संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य प्रक्रियागत विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा शुरू हुई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने नरेंद्र मोदी सरकार, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के प्रयासों की सराहना की। श्री शिंदे ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से रेड कॉरिडोर अब विकास कॉरिडोर में परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 200 जिलों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 3 जिलों तक सिमट गया है। सरकार ने आज कहा कि देश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास 58 करोड़ टन से अधिक कोयले का भंडार उपलब्ध है। इससे संयंत्र औसतन 19 दिनों तक 85% प्लांट लोड फैक्टर पर चल सकेंगे। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।